ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ सभी भक्तों का स्वागत है हमारे हरे कृष्ण उत्सव के दूसरे दिन में। कौन है जो आज पहली बार आ रहा है, हाथ ऊपर कीजिए। कल हमने चर्चा की एक प्रश्न को लेकर, भौतिक संसार की रचना भगवान ने क्यों एवं किस लिए की। कल कौन कौन आए थे, हाथ ऊपर कीजिए। हमने समझा भगवद गीता के द्वारा, जहां पर भगवान बता रहे हैं सर्वप्रथम इस भौतिक संसार का स्वरूप, मामोपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। ये भौतिक संसार जो कि दुखालय और अशाश्वत है, और भौतिक संसार के इस स्वरूप को जानने के पश्चात ये समझ में आता है कि हम यहां पर जो दुख भोग रहे हैं उन कैदियों के समान हैं जो कारागृह में दुख भोग रहे हैं। तो हमने उदाहरण लिया कारागृह का और समुद्र का। ये भौतिक संसार की तुलना की गई है इन दो वस्तुओं से, और यदि किसी को कारागृह से मुक्त होना है तो उसे अपने व्यवहार को सुधारना होगा। यदि किसी को समुद्र पार करना है तो नाव का सहारा लेना होगा। कोई तैर कर नहीं पार कर सकता समुद्र, तिनखे के सहारे कोई समुद्र पार नहीं कर पाएगा। जब तक कि उसे नाव का सहारा न मिलता, वो जीव समुद्र को पार नहीं कर सकता। तो नाव की तुलना हमने की मनुष्य देह, भक्तों के सत्संग, हरि चर्चा और अंततः भगवान श्री कृष्ण के चरण। और मनुष्य देह का लक्ष्य, इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य, इसकी हमने अंत में चर्चा की, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर मा अमृतम गमय। हम जो कि अमृतस्य पुत्र हैं, परब्रह्म के जो हम पुत्र हैं, इस भौतिक संसार में दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, तो हमारा एकमेव उद्देश्य है कि इस मृत्युमय संसार से मुक्त होकर हम अमृतमय संसार को प्राप्त करें। वास्तविक रूप में हम हमारे घर पहुंचे। श्रील प्रभुपाद अक्सर कहा करते थे, बैक होम बैक टू गॉड हेड, दैट इज अवर गोल, कि हमें अपने निज घर में पुनः जाना है जिसे हम छोड़कर आए। तो अब अगला प्रश्न यह है कि हमने भौतिक संसार का स्वरूप तो जान लिया, और यह भी जान लिया कि हमें इस भौतिक संसार से मुक्त होकर जाना है आध्यात्मिक संसार, अपने घर। अगला प्रश्न यह है कि कैसे, जाएं कैसे? यदि आपको कोई कहता है कि नासिक से आपको दिल्ली जाना है, तो नासिक से दिल्ली जाने के कई साधन हो सकते हैं। कोई विमान से जा सकता है, कोई गाड़ी से जा सकता है, कोई रेलगाड़ी से जा सकता है, कोई पैदल भी जा सकता है। विभिन्न साधन हो सकते हैं कहीं से कहीं जाने के। तो यदि हमें भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करना है, तो आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करने के लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए और भगवान द्वारा निर्धारित विधि का पालन हमें करना होगा। एक और उदाहरण, यदि आपको यहां से अमेरिका जाना है, विदेश जाना है, तो क्या आवश्यक है विदेश जाने के लिए? पासपोर्ट, पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट ही केवल नहीं, पासपोर्ट तो बहुत लोग निकलवा लेते हैं बहुत अन्य कारणों की वजह से। पासपोर्ट के साथ होना चाहिए वीजा, और वो वीजा कौन प्रदान करता है? यदि आपको अमेरिका जाना है, तो अमेरिका का वीजा कौन प्रदान करेगा? भारत सरकार कि अमेरिका की सरकार? अमेरिका की सरकार वो वीजा प्रदान करेगी कि नहीं? तो अमेरिका की सरकार वो वीजा उसका ठप्पा मारती आपके पासपोर्ट पर, और अमेरिका की सरकार कहती है कि हां, ये व्यक्ति, ये भारतीय नागरिक अब ये योग्य बन गया है हमारे देश में प्रवेश करने के लिए, तो वो, आप जानते नहीं, अमेरिका जाने के लिए भारतीयों को कितनी लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। बंबई में देखिए, वहां जो यूएस काउंसुलेट है, केवल एप्लीकेशन डालने के लिए आपको 2-3 महीने पहले इंटरव्यू लेना पड़ता है, इंटरव्यू लेना पड़ता है जिसमें आपकी खोजबीन होती है। इतने सारे तो कागजात आपको वहां पर समर्पित करने होते हैं कि आपका कोई वहां पर है जो आपको बुला रहा है, पैसे भर रहा है आपके आने जाने का और वहां पर रहने का। तो उस व्यक्ति का एक पेपर आना चाहिए अमेरिका में, जो आपका कोई रिश्तेदार है इत्यादि, वहां से आपका पेपर आना चाहिए, स्पॉन्सरशिप लेटर जिसे कहते हैं। और फिर यहां पर आप क्या करते हैं, ये इसकी रूपरेखा आपको देनी है वो अमेरिकी सरकार को। और फिर आपको वो प्रश्न पूछेंगे कि आप कब जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कब वापस आपके देश आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से भारतीय वो अमेरिका ऐसे जाते हैं जैसे भगवत धाम जा रहे हैं, फिर से नहीं आना। पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्भारत न विद्यते। तो वो बहुत कड़ा इंटरव्यू होता है उनका, वो उनके सामने बुलेट प्रूफ का एक कांच जैसा होता है, क्योंकि बहुत से भारतीय जो जाना चाहते हैं, इतना पैसा भरते हैं, कुछ 20-25 हजार भरना पड़ता है आपको, और यदि आपका वीजा रिजेक्ट हो गया तो 20-25 हजार अमरीकी सरकार का आपकी तरफ से डोनेशन। आप इतने प्रसन्न हुए आपका वीजा रिजेक्ट किया तो मेरे तरफ से 25 हजार आपके देश को, वो 25 हजार गए उसके। तो कई बार लोगों को जब वो वीजा नहीं मिलता तो वो वहीं पर अपना क्रोध उतारते हैं उनके ऊपर कि क्यों नहीं मुझे वीजा दे, मैं 25 हजार भरा हूं, इतने सारे कागजात और इतना लंबे लाइन में खड़ा था, मैं 2 दिन खड़ा, 3 महीना इंटरव्यू के लिए रुका था, और आप मेरा वीजा रिजेक्ट करते हो, जानते नहीं मैं कौन हूं। वहीं पे गुस्सा करने लगते, देखा हमने अपनी आंखों से, उनके ऊपर गुस्सा करने लगते। तो उन्होंने वो बुलेट प्रूफ डाल दिया कि कोई पता नहीं बंदूक लेके आ जाए, अंदर घुसने के लिए 4-4, 5-5 सिक्योरिटी। अभी तक तो अमेरिका नहीं पहुंचे, सोचिए ये भारत का हाल है, ये मुंबई में ये सब कुछ हो रहा है। चार पांच सिक्योरिटी आपको ऊपर से नीचे तक। मुझे याद है जब मैं अपने इंटरव्यू के लिए गया था तो मेरे सामने एक व्यक्ति, वो अपने उसका बेटा किसी यूनिवर्सिटी में वहां पर पढ़ रहा था अमेरिका के, और वो होता है कॉन्वोकेशन सेरेमनी कि अब वो वहां पर उत्तीर्ण हो गया तो माता पिता को बुलाया जाता है, जहां पर माता पिता देखते हैं कि हमारे पुत्र को अब डिग्री मिलने वाली है, तो इसलिए माता पिता जा रहे थे। तो अब उनको सबसे पहले ये सिद्ध करना था, देखिए कितने संशय होते हैं ये सरकारों के बीच में, तो सबसे पहले इस व्यक्ति को, ये जो दोनों माता पिता, इनको ये सिद्ध करना था कि वो जो भी लड़का है वो लड़का इनका ही पुत्र है, ये सिद्ध करो कि वो आपका पुत्र है। तो अब सिद्ध कैसे करें भाई, आप वो डीएनए वीएनए निकालो हमारा, उधर जाके चेक करो उसका, निकालो वो वैज्ञानिक तरीके से। तो उन्होंने एल्बम लेके आए, पहले उनकी शादी की एल्बम लेके आए, ये देखो ये हम दोनों, ये मैं इसका पति, ये मेरी पत्नी, हम दोनों, ये फोटो देखिए, हमारी शादी हुई, अभी भी एक साथ ही है। और फिर उसमें फोटो दिखाए, ये हमारा बेटा, ये इतना सा था, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, अब ये इतना बड़ा हो गया, ये बेटा हमारे साथ जो खड़ा है। तो फोटो का एल्बम उस दिखाने के लिए, तो अब वो फोटो का एल्बम वो अंदर नहीं अलाउ कर रहा है सिक्योरिटी, क्योंकि वो फोटो के एल्बम में कुछ मेटल का पीस था। होते ना कई बार एल्बम में स्पाइरल बाइंडिंग होता है, तो मेटल का पीस, बोले ये एल्बम अंदर नहीं जा सकता। और वही उनके पास वो गवाही थी कि ये हमारा पुत्र है, तो मेटल डिटेक्टर में आए, नहीं आप उसको लेके उसके सर पे मार सकते हो अगर रिजेक्ट हो गया तो, वो एल्बम को लेके उसके सर पे मार सकते हो। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको कि एक ये देश, इस पृथ्वी का देश, ये अमेरिका, ये अमेरिका छोड़ दीजिए, मैं बर्मा गया, वो बर्मा में कोई पूछता नहीं, वो बर्मा जैसे देश में घुसने के लिए आपको पता नहीं कितने तिकड़म करने पड़ते हैं, वहां पर इतने सारे सिक्योरिटी और आपकी खोजबीन और सारे कागजात और ये सब कुछ, ये कपड़ों में तो जा ही नहीं सकते आप। तो एक देश में अंदर प्रवेश करने के लिए एक व्यक्ति को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ऐसे पापड़ जो उसको भी नहीं मिलते खाने को बाद में। तो कल्पना कीजिए कि आध्यात्मिक संसार, भगवान का ये जो निज धाम है, आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करने के लिए क्या कोई योग्यता नहीं प्राप्त करनी पड़ेगी? यहां तक कि स्वर्ग, जो कि इस भौतिक संसार में है, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए कितने पुण्य करने पड़ते हैं लोगों को, इतने सारे पुण्य सब एकत्रित करके उसके पश्चात फिर यमराज जी लेखा जोखा देखते हैं, बैलेंस शीट बराबर है कि नहीं, कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, और पुण्य के अनुसार क्या उसे स्वर्ग मिलना है कि नहीं। यहां तक कि स्वर्ग तो आजकल कलयुग में छोड़ ही दीजिए, स्वर्ग का द्वार भी नहीं दिखाते, तो आजकल ये स्वर्ग और भगवत धाम जाने का ट्रैफिक पूरा कुछ नहीं है, वहां पे खाली है। नर्क जाने का ट्रैफिक बहुत भरा हुआ है, उधर बहुत ट्रैफिक जैम हो रहा है, कलयुग से उस दिशा में बहुत से जीव जा रहे हैं। तो जब हम ये प्रश्न सामने रख रहे हैं या ये प्रस्ताव सामने रख रहे हैं कि हमें, हमारा उद्देश्य है आध्यात्मिक संसार को प्राप्त करना, तो योग्यता वो कौन सा वीजा है, और वो जैसे कि अमरीकी सरकार वो वीजा देती है, उसी प्रकार से भगवान और भगवान के पार्षद हमें वो वीजा देते हैं। इसलिए जैसे कि अमेरिका ने भारत में उनकी एम्बेसी खोल रखी है, अमेरिकन एम्बेसी है बंबई में, तो अमेरिकन एम्बेसी में आप जाओ वहां पर सब अमरीकी काम कर रहे हैं, उसके देश का झंडा है, और उस एम्बेसी में आप प्रवेश करोगे तो जितने सारे नियम हैं अमेरिका के वहां लागू होते हैं, भारत के नियम लागू नहीं होते। तो श्रील प्रभुपाद ये उदाहरण दिया करते थे कि भगवान श्री कृष्ण का जो निज धाम है गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन यदि अमेरिका की तुलना की जाए तो जितने सारे मंदिर हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रामाणिक मंदिर, वो सारे मंदिर वो एम्बेसी हैं गोलोक वृंदावन धाम के, यहां पर जहां पर हमको वीजा मिलेगा। क्या मिलेगा? वीजा मिलेगा। तो ये जो मनुष्य देह हमें मिल चुका है, ये मनुष्य देह पासपोर्ट है ना। मनुष्य देह मिल जाना मतलब पासपोर्ट हासिल कर लेना, क्योंकि बिना पासपोर्ट के वीजा भी नहीं मिलने वाला। तो आध्यात्मिक संसार में जाने के लिए पहले ये मनुष्य देह प्रकृति हमें पासपोर्ट लाकर प्रदान कर देती है। तो पासपोर्ट मिलना बहुत आसान है, परंतु वीजा मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो मनुष्य देह हमें प्राप्त हो चुका, अर्थात पासपोर्ट हमारे हाथ में है। अब जो भगवान ने अपनी एम्बेसीज खोल रखी है इस भौतिक संसार में, अलग अलग जगहों पर, कहां पर भी आप जाइए, और भगवान से ज्यादा श्रील प्रभुपाद जी जो यहां पर बैठे हुए हैं, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से उन्होंने तो हरेक पूरे विश्व के, इस पूरी पृथ्वी पर जितने नगर आदि ग्राम जो कि भगवान की भविष्यवाणी थी, वहां पर श्रील प्रभुपाद ने और उनके प्रतिनिधियों ने कृपावश आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पर आपके बगल में एम्बेसी खोल दी श्रील प्रभुपाद की कृपा। कहां कहां प्रभुपाद ने जाकर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर नहीं स्थापित किए। मैं गया था रशिया, रूस क्षेत्र, ये ऐसी जगह है जहां पर एक जमाने में केवल नास्तिकवाद प्रचार होता था, नास्तिकवाद कम्युनिज्म बस और कुछ नहीं। और ये ऐसा देश जहां पर कोई सभ्यता नहीं, बाहर का वातावरण वहां पर इतनी सर्दी, -50 डिग्री तक वहां पर टेम्परेचर गिरता है, -50 तक। ऐसे देश में जहां पर भगवान श्री कृष्ण का तो नाम छोड़ दीजिए, कोई नैतिकता भी नहीं पालन करता, अंधकार, तामसिक जीवन, पापमय जीवन, ऐसे देशों में श्रील प्रभुपाद वहां पर गए और श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण के केंद्र खोले, ये एम्बेसीज वहां पर खोले, ताकि धीरे धीरे। और आज मैं जब गया था कुछ साल पहले, तो मैंने देखा कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से जो श्रील प्रभुपाद ने बीज बोया था बहुत वर्षों पहले, आज उसी रशिया में, कई बार हम भारतीयों को ये सब देखकर थोड़ी शर्म आती है कि रशिया जैसे देश में वो रशियंस सैकड़ों की संख्या में वो लोग भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं, केवल नाम ही नहीं ले रहे, अपने जीवन को परिवर्तित कर दिया है उनकी सेवा करने हेतु, और न केवल परिवर्तित कर दिया, उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। ऐसे सैकड़ों हैं, हजारों हैं ऐसे, और दुर्भाग्य की बात ये कि उस देश में हमारे बहुत से भारतीय भी हैं। तो मैं रशिया से गया जर्मनी, जर्मनी में वहां पर हिटलर का जो देश, सोचिए वहां पर भी कितने सारे हमारे भक्त हैं। तो वहां पर हम हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, तो ये इस्कॉन के भक्त जर्मन डिवोटी वहां के, जो अभी हरे कृष्णा में वो जुड़ गए हैं, ये लोग सब धूप में खड़े हरिनाम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, भगवान का महाप्रसाद बांट रहे हैं, पुस्तकें बांट रहे हैं, इतना कठोर परिश्रम दिन भर कर रहे हैं, और वहां पर हमारे भारतीय वो दुकान में खड़े गौ मांस खा रहे हैं। ये सब वो ये मैकडोनल्ड्स और ये सब में दारू पी रहे हैं और गौ मांस खा रहे हैं, ये स्थिति है। और ये उनको भी जाकर, ये सारे ये रशियन ये जर्मन, उनको जाकर ये जो ये खा रहे हैं ये सब, ये जो पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, इतना पाप कर रहे हैं, उनको जाकर बता रहे हैं कि ये भगवद गीता आप देखिए, आप ही के देश की है, ये भगवद गीता पढ़िए, इस भगवद गीता में क्या लिखा है उसे जानिए, और ये जो आप कर रहे हैं उसे छोड़िए। बहुत वर्ष पहले हमारे इस्कॉन के एक ब्रह्मचारी कनाडा से आए थे बंबई, तो उनको मैं एक हमारे कॉलेज के कार्यक्रम में लेकर गया, इंजीनियरिंग कॉलेज बंबई का एक, तो वहां पर कुछ समय मैंने प्रवचन दिया, उसके पश्चात फिर मैंने इन भक्त को कहा जो कनाडा से आए थे कि आप कुछ विद्यार्थियों को कुछ बोलना चाहेंगे, तो ये मेरी ही तरह ब्रह्मचारी, इस प्रकार की उनकी वेशभूषा, उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया भगवान श्री कृष्ण के सेवा प्रचार हेतु, तो अब बंबई के नव युवकों को वो देख रहे हैं और उनको उन्होंने क्या कहा ये अभी भी मुझे याद है। उन्होंने इन विद्यार्थियों को, इन युवकों को कहा बंबई के, कि मैं जब आप लोगों को देख रहा हूं, आप जो हमारी पाश्चात्य संस्कृति का अंधाधुंध जो पालन कर रहे हो, जो आपका ये पहनावा है, जो आपका बोलचाल, रहन सहन, आदतें, किस प्रकार के संगीत आप सुनते हो, किस प्रकार की पिक्चरें आप देखते हो, ये सब कुछ जो मैं देख रहा हूं, ये कनाडा के भक्त बता रहे थे, ये सब कुछ जो मैं देख रहा हूं, इन्होंने कहा कि मुझे आप भारतीय युवकों के ऊपर तरस आ रहा है, I feel pity on all of you because what we have vomited out, you are eating that. बहुत strong उन्होंने statement बोला कि जो हमने खा के फेंक दिया, थूक दिया, उसको आप उठा उठा के और चबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा जो इंद्रिय भोग आप लोग कर रहे हो ना बंबई शहर में, उन्होंने कहा ये बंबई शहर में जितना इंद्रिय भोग आप लोग कर रहे हो, ये सब इंद्रिय भोग हमने खा के चबा के इसका स्वाद पूरा बेस्वाद करके फेंक दिया, थूक दिया, और इसको आप उठा उठा के और इसमें कुछ मिल जाएगा, कुछ ये अमेरिका का प्रोडक्ट है, ये अमेरिका का पिक्चर है, ये अमेरिका का गाना है, ये अमेरिका का जीन है, ये अमेरिका का वो है, ये है। वो बोले कि आप हमको हमारा अनुकरण करने का कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू इमिटेट वी अमेरिकन्स एंड कैनेडियंस, और उन्होंने कहा आप वो ठीक से भी नहीं कर पा रहे, वो इमिटेट भी ठीक से नहीं कर, वो अनुकरण भी आप ठीक से नहीं कर पा रहे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं यहां पर आपको आश्वासन देने आया हूं, सब विद्यार्थियों को वो कह रहे थे, मैं आपको आश्वासन देने आया हूं कि उस पथ पर मत चलिए जो पथ हम चल चुके हैं, धोखे खाकर, हम धक्के खाकर, मार खाकर, ठोकर खाकर, हम आपको आश्वासन दे रहे हैं उस पथ पर मत चलो, जो पथ आपके भगवान ने निर्धारित किया है उस पथ पर आइए, उस पथ पर आइए। ये वो व्यक्ति आश्वासन दे रहा है, कौन? उस देश का। तो श्रील प्रभुपाद जो 70 वर्ष की उम्र में, कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति 70 वर्ष की उम्र में वो भारत छोड़ता है, वो भी 1960 की बात हम बता रहे हैं, वो भारत छोड़ता है, ये व्यक्ति जाता है अमेरिका जैसे देश में, कुछ नहीं उनके हाथ में, और वहां जाकर वो भगवान श्री कृष्ण का संदेश एक एक व्यक्ति जिनसे वो मिलते हैं उनको सुना रहे हैं। कल हम ज्यादा चर्चा करेंगे इसके विषय में, परंतु आज हमने ये मुद्दा इसलिए लिया ये बताने के लिए कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से उन्होंने कितना आसान बना दिया है हमें वो वीजा प्राप्त करना, जो हमने उदाहरण लिया आध्यात्मिक संसार जाने का वीजा प्राप्त करना कितना आसान बना दिया। जैसे यहां पर देखिए, ये इंद्रप्रस्थ हॉल में ये जो 3 दिन का वीजा स्टैंपिंग प्रोग्राम चल रहा है, क्या ये आध्यात्मिक संसार जाने का वीजा स्टैंपिंग प्रोग्राम चल रहा है। हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, भक्त हैं, उन्होंने कितने लोगों को जा जाके बताया, कितने पैम्पलेट्स बांटे आपने, 20,000 पैम्पलेट बांटे। सोचिए 20,000 न्योता दिया गया है, 20,000 तो क्या केवल पैम्पलेट, उसके अलावा और कितने विशेष इनविटेशन न्योता दिए गए, इतने लोगों को इतना न्योता दिया गया। क्या न्योता था? इस दुखाले संसार से मुक्त होकर आध्यात्मिक संसार जाने का फ्री वीजा स्टैंप हो रहा है, फ्री। और उन 20-25 जितने हजार लोगों को यह न्योता दिया गया, कितने लोग आए देखिए आप लोग। तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इसे गंभीरता से लिया और आप लोग इसे चयन किए हैं। और हम प्रार्थना करेंगे उन सब के लिए जो दुर्भाग्यवश इसका चयन न कर सके, परंतु हो सकता है भगवान की कृपा आगे चलकर भविष्य में कभी उन पर हो, तो वो भी अपने पासपोर्ट पर ये वीजा स्टैम्प कराकर इस दुखालय अशाश्वत संसार से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त हों। तो इसलिए आज का जो शीर्षक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे कल के शीर्षक से संबंधित, कर्मी से कर्म योगी कैसे बने। क्योंकि इस भौतिक संसार में हम आए हैं केवल अलग अलग प्रकार के कर्म कर रहे हैं, एक कर्मी बनकर रह गए हैं केवल। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि इस पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी में, पूरी सृष्टि में कोई ऐसा जीव नहीं जो बिना कर्म किए रह सके। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवशः कर्म प्रकृति सर्व जैर्गुणैर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक क्षण भी नहीं जाता जब मनुष्य किसी कर्म में नहीं लगा, एक क्षण भी नहीं जाता जब वो किसी कर्म में नहीं लगा रहता। जैसे कि हम लोग सब इस इंद्रप्रस्थ हॉल में बैठे हुए हैं, तो आप लोग सब सुन रहे हो, यहां पर मैं कुछ बोल रहा हूं, कोई ये कैमरे को संभाले हुए है, कोई साउंड सिस्टम को संभाले हुए है, किसी न किसी प्रकार का कर्म चल रहा है ना। आप बैठे हुए हो, आपके कान खुले हैं, सुनने का कर्म चल रहा है, यहां पर मेरे बोलने का कर्म चल रहा है, आपके सुनने का कर्म चल रहा है, और ये तो केवल स्थूल शरीर कर्म कर रहा है। इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है मन, वो तो हर क्षण पता नहीं कितने कर्म करता रहता है। आपका स्थूल शरीर यहां बैठा हुआ है, एक कर्म कर रहा होगा श्रवण करने का कर्म, परंतु आपका जो सूक्ष्म शरीर, ये जो मन है, ये पता नहीं कितने सारे कर्म अब तक कर चुका होगा पिछले आधे घंटे में, अनगिनत, पता नहीं कहां कहां आपको ले गया। अभी मैं अमेरिका की बात कर रहा, हो सकता आपका मन पहुंच गया होगा अमेरिका, ये मन ऐसा ही है, कुछ भी सुनता है तुरंत यहां वहां भागने लगता है, बच्चे के समान, शरारती बच्चे के समान। तो हो सकता है कोई बैठा, शरीर यहां बैठा है और यहां पर प्रवक्ता के मुख से सुन रहा है कि अमेरिका अमेरिका अमेरिका, तो तुरंत अमेरिका, अरे अमेरिका, मेरी भी इतनी इच्छा थी अमेरिका जाने की, पता नहीं कब जाऊंगा अमेरिका। यहां पे प्रवचन चल रहा है, हम बोल रहे हैं बहुत आध्यात्मिक संसार के विषय में, वो पहुंच गए अमेरिका में, डिज्नी वर्ल्ड में। तो भगवान कहते हैं कि एक भी क्षण नहीं जाता, ऐसा एक भी क्षण नहीं जब जीव, हम मनुष्य, कोई कर्म में नहीं लगे। कई बार लोग कहते हैं कि यदि आपको शांति प्राप्त करनी है तो आप सारे कर्म छोड़ दो करना। जैसे कई ऐसे पंथ के हैं जो मौन धारण कर लेते हैं, कुछ नहीं करेंगे, मौन धारण कर लिया, ना तो बोलेंगे, ना कुछ खाएंगे पिएंगे, ना देखेंगे, मौन, मौनी बाबा। ऐसे कुछ 3-4 मौनी बाबा वो ध्यान में, समाधि में थे, तो उन्होंने ध्यान के लिए, आपको पता है, त्राटक त्राटक लगाने के लिए उन्होंने एक मोमबत्ती जला रखी थी, एक दिया जला रखा था, और चारों त्राटक लगाए इस दिए के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे, और प्रण क्या लिया था, प्रण लिया था मौन, मौन व्रत, मौन व्रत धारण किया, कोई कुछ बोलेगा नहीं। और कोई यदि कुछ बोल दिया तो फिर उसे उस समूह से बाहर जाना होगा। तो अब वो दिया, दिए की लौ के ऊपर लगाए हुए अपना त्राटक, और एक महीना बीत गया, कोई कुछ बोला नहीं, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, कुछ कर्म नहीं चल रहा, केवल लगाए हुए एक टक उस दिए के ऊपर अपना ध्यान, दिए के लौ के ऊपर। 1 साल बीत गया, 1 साल बाद वो दिया, वो दिए की लौ थोड़ी डगमगाई। तो जैसे ही दिए की लौ डगमगाई, अब वो चारों देख रहे हैं दिए की लौ डगमगा रही है, परंतु व्रत लिया है, मौन, मौन व्रत लिया है, तो बोले कैसे। तो 1 साल बाद एक से रहा नहीं गया, उसने हल्के से कह दिया, लौ डगमगा रही है, बंद हो जाएगी। अर्थात भंग हो गया इसका व्रत। तो उसके 1 साल बाद वो दूसरा बाबा बोलता है, तुम पिछले साल बोले, जाओ। तब इसने क्या किया, इसने भी तो बोला ना। तो तीसरे साल तीसरा बाबा बोलता है कि तुम दोनों बोले, मैं नहीं बोल रहा। और उसके 4 साल बाद चौथा बाबा बोलता है कि तुम तीनों गए गुजरे, केवल मैं हूं जो अंत तक टिका बिना बोले। तो श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि यदि कोई इस पंथ को का पालन कर रहा है कि मैं कुछ न करके शांति प्राप्त करूंगा, ये संभव नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वो मौन धारण किया है, वो भी कुछ एक काम है, कर्म है। जैसे श्रील प्रभुपाद के सामने एक व्यक्ति आए और उन्होंने श्रील प्रभुपाद से कहा कि मैं जिस आध्यात्मिक पथ का पालन कर रहा हूं उसमें मुझे इच्छाहीन होना है, डिजायरलेस, आई हैव टू बिकम डिजायरलेस, इच्छाहीन। तो प्रभुपाद ने कहा कि आप ये जो बोल रहे हो, आपको डिजायरलेस होना है, ये भी एक डिजायर ही है ना। तो मान लो, प्रभुपाद ने कहा, ये मान लो इस प्रकार से कहना हुआ, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बिकम डिजायरलेस। कोई तुक हुआ इसका कि तीव्र इच्छा है मेरी कि मैं इच्छा विहीन हो जाऊं। इसलिए भगवान कहते हैं, सर्वप्रथम ये जान लेना है कि कर्म तो अवश्य ही करना है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवश्य कर्म। अवश्य ही कार्य या कर्म तो हरेक जीव को करना ही होगा। सर्व प्रकृति जैर गुणैर, ये जो प्रकृति कल हमने जिसकी चर्चा की, गुणैर जो तीन गुणों के हम अधीन इस प्रकृति में काल के प्रभाव में बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। तो अब ये बात तो सिद्ध हो गई भगवत गीता के द्वारा और हमने भी सुन लिया, हमारे भी साक्षात्कार हैं कि बिना कर्म किए हम कोई नहीं रह सकते। तो अक्सर अब आप किसी को पूछो, विशेष रूप से भारतीयों को पूछो कि भगवत गीता का क्या संदेश है, या भगवत गीता आप कितना जानते हैं, कितना पढ़े हैं। तो अक्सर मैं कहा करता हूं कि एक भारतीय को आप रात के 2 बजे भी उठाओ और पूछो कि भाई भगवत गीता का कौन सा वो श्लोक है जो आप जानते हो, या भगवत गीता का कौन सा संदेश है, तो रात के 2 बजे भी नींद से उठ के वो व्यक्ति वो श्लोक बोलेगा अवश्य, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई मंदिर वंदिर जाने की जरूरत नहीं, कर्म ही पूजा है ना। कितनी बार आपने सुना है ये, कर्म ही पूजा, कोई गलत नहीं है इसमें, परंतु ये जानना आवश्यक है कि कौन सा कर्म पूजा है या कौन सा कर्म पूजनीय है। यह उदाहरण दिया गया है कि एक चोर भी कर्म करता है, चोरी करता है, बैंक लूटता है, उसने भी कर्म किया, मां दुर्गा को पहले नमस्कार करके जाता है कि हे मां मैं जा रहा हूं, मेरा ये कार्य आप सिद्ध कीजिए, आपकी कृपा से बैंक मैं लूटूंगा। तो वो भी एक कर्म कर रहा है, उसने भी परिश्रम किया, बुद्धि लगाई, और अब उसको पकड़ने के लिए पुलिस भी परिश्रम कर रही है और पुलिस भी बुद्धि लगा रही है। अब किस में से किसका कर्म पूजा है, चोर का या पुलिस का, किसका? चोर की पार्टी का कोई होगा तो बोला वैसे चोर का ही तो होगा ना, और क्या। तो कर्म पूजनीय हो सकता है, क्यों नहीं, यदि वो सही कर्म हो। 3 मुद्दे इसमें समझना आवश्यक है, कर्म पूजा या कर्म पूजनीय 3 मुद्दों के वजह से हो सकता है, 3 कारणों के वजह से। वो कर्म सही कर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें जो अच्छा लगे बस करते रहो और हम कर्म योगी बन गए बस, क्योंकि भगवान कहते हैं ना कर्म करने का अधिकार है तुम्हें, करते रहो लगे रहो। नहीं, कर्म सही प्रकार का होना चाहिए सर्वप्रथम। दूसरा मुद्दा कि वो किसके लिए किया जा रहा है, भगवान को समर्पित वो यदि कर्म हो, जैसे अर्जुन ने अपना युद्ध समर्पित किया भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर, तो वो कर्म जो भगवान को समर्पित हो अर्थात भगवान के लिए जो कर्म किया जाए वो पूजनीय। और तीसरा मुद्दा, कौन सी चेतना में वो कर्म किया जा रहा है, शुद्ध चेतना में, निस्वार्थ भाव से, अहित्व की भाव से जो कर्म किया जाए वो है कर्मयोग। तो 3 मुद्दे ध्यान में रखिए, कल पूछेंगे हम आपसे, घबराइए मत, आइएगा। सर्वप्रथम कर्म पूजनीय कब होगा, जब सही कर्म होगा, सही व्यक्ति के लिए किया गया वो कर्म होना चाहिए और सही चेतना में, सही कर्म सही व्यक्ति के लिए सही चेतना में, ये 3 मुद्दे जब सिद्ध होते हैं तब वो कर्म पूजनीय कहलाता है। तो अब यहां पर कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी प्रकार का कर्म कर रहा है तो उसे कर्म योगी नहीं कहा गया शास्त्रों में, कहा गया है कर्मी, जो कर्म केवल करे वो कर्मी। और जो अपने कर्मों से भगवान के साथ रिश्ता स्थापित करे वो है कर्म योगी। जो अपना रिश्ता भगवान से स्थापित करता है वो है कर्म योगी। योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ केवल ये नहीं, हालांकि भगवान भगवद गीता में कहे हैं अर्जुन को तस्मात योगी भव अर्जुन, तो तुरंत ये योग, जैसे ही योग ये शब्द हम सुनते हैं तो तुरंत मन में क्या आता है? रामदेव बाबा। कि कोई व्यक्ति पद्मासन में बैठा हुआ, नाक को पकड़े हुए, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपाल भाती, वो सब चालू, तो लोगों को लगता है कि हाँ मैं वो शिविर में गया, योग शिविर में मैं गया और योग शिविर में मैंने सब अंदर बाहर क्या कुछ नहीं करना सीख लिया और इतने सारे आसन फिर प्राणायाम और ये सब कुछ मैंने सीख लिया तो मैं योगी बन गया, है ना। योग का वास्तविक अर्थ है, ये सारी चीजें भी योग का एक भाग है, केवल बस एक भाग है, परंतु योग का वास्तविक अर्थ है वो योगी जो अपने मन चेतना अर्थात कर्मणा मनसा वाचा, अपने कर्मों से, अपने मन से और अपने वचनों से जो भगवान से संबंध स्थापित करे वो है शुद्ध योगी। तो जब कोई अपने कर्मों के द्वारा भगवान से रिश्ता स्थापित करता है उसे कहते हैं कर्म योगी। जो ज्ञान के द्वारा भगवान से रिश्ता स्थापित करता है वो हो गया ज्ञान योगी। और इन सब के ऊपर जो भक्ति से अपना संबंध स्थापित करता है वो है भक्ति योग या भक्ति योगी। तो जब हम ये सुनते हैं भगवद गीता में भगवान कहते हैं तस्मात योगी भवा अर्जुन, भगवान ये कह रहे हैं अर्जुन ने ये सुनने के पश्चात किया क्या, ये जानना बहुत आवश्यक है। कई बार लोग भगवद गीता को कोट कर कहते हैं कि अरे भगवान ही कह रहे हैं तस्मात योगी भव कि योगी बनो, तो मैं जो योग कर रहा हूं किसी शिविर में जाकर तो भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन कर रहा हूं। अर्जुन ने भी ये सुना, अर्जुन सुन के भगवान श्री कृष्ण से क्या कहे, पूरी भगवद गीता सुन ली और भगवद गीता में यदि ये कहा गया है कि तस्मात योगी भव अर्जुन, तो अर्जुन पूरी भगवद गीता सुनने के बाद क्या भगवान से ये कहे चलो भगवान अभी योगा मैट कहां है लाओ, कौन सा शिविर कहां खोला है कुरुक्षेत्र में, हाँ हरिद्वार थोड़ा बगल ही है कुरुक्षेत्र के, चलो हरिद्वार चलते हैं वहां पे किसी योग शिविर में चलते हैं। नहीं, अर्जुन योगी कैसे बने, योगी बने अर्जुन भगवान ने जो आदेश दिया, जिस कर्म को करने का आदेश दिया, जिस तरीके से अर्जुन ने अपनी मन अर्थात कर्मणा मनसा वाचा से भगवान से वो संबंध स्थापित किया, उस प्रकार से अर्जुन योगी बने। तो दो प्रकार के मनुष्य, शुरुआत यहां से होगी, दो प्रकार के मनुष्य हैं, भगवान में निष्ठा रखने वाले अर्थात निष्ठावान, और जो भगवान में निष्ठा नहीं रखते अर्थात निष्ठाहीन। तो निष्ठाहीन ये जो हैं, इनकी शुरुआत होती है कर्मी, नास्तिक, शून्यवादी, जो कोई वेद को नहीं मानते, जो कोई शास्त्रों को नहीं मानते, बस सब कुछ शून्य है, आप शून्य हो, परब्रह्म जो भी कुछ है वो भी शून्य है, मैं शून्य हूं, ये संसार शून्य है। परंतु जब भूख लगती है तो शून्य पेट नहीं भरता उनका। तो निष्ठाहीन की जो श्रृंखला है ये हमारे शास्त्रों में बताई गई है। एक है जो केवल, जैसे कल हमने चर्चा की, गधे के समान कर्म कर रहा है, बस वो गधा जानता नहीं कि वो किसके लिए कर्म कर रहा है, क्योंकि मूढ़, संस्कृत में उसे मूढ़ कहा गया है, उस गधे को। एक गांव में दो गधे रहा करते थे, उनमें से एक गधा उसने बहुत उन्नति कर ली और उसे बंबई शहर में नौकरी मिली। लोग सोचते ना बंबई शहर में नौकरी मिलना मतलब उन्नति हो गई, तो वो गांव से अब गया बंबई और ठाट बाट में बंबई में नौकरी कर रहा है। और उसने एक साल बाद अपने दूसरे दोस्त को बुलाया, ये जो गांव वाला गधा, इसको बुलाया कि थोड़ा आओ देखो क्या मेरे ठाट बाट है यहां बंबई शहर में। तो ये जो गांव वाला गधा गया मिलने के लिए अपने दोस्त, अब जो शहर में रह रहा है बंबई शहर में, तो मिलने जब गया तो उसने देखा चारों तरफ इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और रोडें, सड़कें और मोटर गाड़ी और ट्रेन और भीड़ भड़क्का, और हाय हाय, उसे कहीं घास नहीं मिला, सब जगह रोड ही रोड, रोड ही रोड, कहीं घास ही नहीं मिला कुछ खाने के लिए। तो सोचा कि मेरा दोस्त भाई कहा है कि शहर में उसने बहुत उन्नति कर ली, तो ठीक है मेरा दोस्त कुछ मुझे अच्छा फिश खिलाएगा शायद। तो वहां पर अपने दोस्त से मिलने गया, शहरी गधे से। तो ये शहरी गधा उसे कहता है कि भाई तू बैठ यहां पे, अभी तो 9 से 5 का मेरा टाइम है काम करने का, उसके बाद में मैं मिलता हूं। तो वहां पर वो सब टाइमिंग रहता है ना बंबई में, तो सभी लोग 9 से 5 और जो भी आजकल तो 9 से 9, 9 से 10 चल रहा है सब कुछ। तो ये दिन रात परिश्रम करने के बाद, क्योंकि धोबी के लिए काम करता था ये गधा, परिश्रम करने के बाद पहुंचा और कुछ घास इसके मुख में था, उसमें से कुछ थोड़ा सा घास इसने अपने गांव वाले दोस्त को दे दिया। तब ये गांव वाला दोस्त पूछता, भाई तू दिन भर क्या कर रहा था? भाई काम करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी यहां पे निठल्ले बैठ सकता है कोई, तो क्या काम किया और तुमको मिला क्या उस काम? दिन भर उसने वो धोबी जो भी कपड़े वो धोता उसको अपने पीठ पर ढोक के यहां से वहां, घाट से फिर से उसके धोबी की दुकान से फिर से घाट, घाट से फिर से धोबी की दुकान, यही तो उसका काम। तो अब मिला क्या इसने जब पूछा, ये घास और क्या? तो ये गांव वाला गधा कहता है, बोलता ये घास जो तुम्हारे मुख में लाए हो, इस घास के लिए तुम दिन भर ये सब कर रहे, ये सब करते हो तुम? अरे ये घास तो मुझे गांव में सब जगह कहीं पर भी मिल जाती है, चलते फिरते हम चरते रहते हैं घास, तो गांव में तो कितनी घास है ये, और मैं तो आराम से सो के ये घास खाता हूं और खाने के बाद भी सोता हूं आराम से। तो ये शहरी गधा जिसने अब बहुत कुछ तौर तरीके सीख लिए शहर के, तो ये अब अपने गांव वाले गधे को कहता है, तू तो गधा का गधा रह गया, अरे तुझे पता नहीं यहां पर मेरे प्रोस्पेक्ट्स क्या है, उन्नति करने के कितने अवसर हैं यहां पर। क्या अवसर है बताओ भाई? पिछले हफ्ते ये जो मेरा मालिक है ना, ये जो धोबी मेरा मालिक, ये अपनी बेटी को डांट रहा था, उसकी बेटी है, उसकी बेटी को डांट रहा था, उसकी बेटी ने कुछ गलती की और इस धोबी ने, मेरे मालिक ने अपनी बेटी को डांटा, फिर से यदि तुमने वो गलती की, इस गधे से तुम्हारी शादी करा दूंगा। और मैं जानता हूं कि वो फिर से वो गलती करेगी, वो फिर से वो गलती की उसने। तो बस जान लो क्या होगा, फिर तो मेरी शादी में आना। तो ये कहानी बताई गई है कि इस भौतिक संसार में जो केवल इस धारणा में जी रहा है कि मुझे केवल कर्म करना है, कर्म करना है, कर्म करना है, किस लिए? ये सारे अवसर, ये थोड़ा सा घास जो मिल जाए दिन के अंत में, अर्थात कुछ पैसे मिल जाए, और उतना ही नहीं, इस भौतिक संसार, इस प्रकृति के जो धोबी हैं, जो इस प्रकार से हमें झूठे आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ ये मिल जाएगा, तुम ईश्वर बन जाओगे, तुम परम भोगी बन जाओगे, तुम सिद्ध बन जाओगे, तुम ये बन जाओगे, वो बन जाओगे, ये सारे जो प्रलोभन है इस भौतिक संसार के, ये प्रलोभन उसी के समान है जैसे उस धोबी ने अपनी बेटी से क्या कहा। तो कर्मी जो केवल कठोर परिश्रम में लगा रहा है, और फिर जब उसे कुछ मिलता नहीं, प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अशाश्वतम, कल हमने चर्चा की, यदि कुछ आए भी हाथ में तो वो कब तक रहेगा, कब तक टिकेगा, तो अशाश्वतम। पैसा, लक्ष्मी देवी वो आती जरूर है, कितने भी द्वारों से आए, परंतु जाती भी है उतनी ही रफ्तार से। तो जो भी हमारा ऐश्वर्य, जो भी उपलब्धियां हैं, ये सारी उपलब्धियां, ये सारे ऐश्वर्य, ये जिस रफ्तार से आए हैं उस रफ्तार से जाएंगे भी, अशाश्वतम। तो जब ये जीव ऐसे अशाश्वतता का अनुभव करता है, तब धीरे धीरे भगवान से विश्वास उठने लगता है उसका, कि भगवान वगैरह कोई नहीं है तो नास्तिक। नास्तिक कौन है? जिसको भगवान में आस्था नहीं, वो है नास्तिक। और इस भौतिक संसार में, भारत में भी आप देखिए, बहुत से ऐसे हैं जो कि बाहरी रूप से वो भगवान को नकारेंगे नहीं कि भगवान नहीं, उनका अस्तित्व नहीं, बल्कि यदि उनको पूछा जाए कि भाई तुम भगवान पर विश्वास करते हो तो बताओ कि तुम्हारे अनुसार भगवान की परिभाषा क्या है, या कितना दृढ़ विश्वास भगवान के ऊपर है तुम्हारा, तब फिर थोड़ा डामाडोल हो जाती स्थिति। जब ये पूछा जाए कि भाई तुम्हारी आस्था यदि है तो उसे सिद्ध करो कि तुम्हारी आस्था कितनी है। एक बार एक व्यक्ति नाई के दुकान में गया, और नाई के दुकान में गया तो वो नाई उसके बाल काट रहा था, तो बाल काटते समय ये जो व्यक्ति, ये कुछ भगवान का नाम ले रहा था, क्योंकि अभी नाई के हाथ में बहुत कुछ है ना, क्या बोलते हैं उसको, उस्त्रा वगैरह सब कुछ रहता है उसके हाथ में, तो वो उसके बाल काट रहा है सब, तो ये भगवान का नाम ले रहा था। तो नाई कहता है, आप क्या आस्तिक हो क्या, इतना भगवान का नाम ले रहे हो? ने कहा हाँ। तो ये नाई ने कहा, मैं नास्तिक हूं। इसने पूछा, क्यों भाई तुम नास्तिक क्यों? क्योंकि मैंने इतने सारे दुख देखता हूं इस भौतिक संसार में, इतने दुख देखता हूं, तो वो भगवान यदि हैं कहीं पर तो वो क्यों नहीं इस दुखाले को सुखाले बनाते? तो मेरे अनुसार जब मैं दुख देखता हूं इस भौतिक संसार में, तो मैं इस निष्कर्ष पर आता हूं कि कोई भगवान है ही नहीं, क्योंकि यदि होते तो कुछ करते। तो दुखों को देखने के वजह से वो इस निष्कर्ष पर आया कि इस भौतिक संसार का कोई मालिक नहीं, कोई भगवान नहीं। तो अब ये व्यक्ति जो भी अपने बाल वगैरह कटवा कर ये बाहर गया, और इसने नाई को बाहर बुलाया और कहा कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, मैं किसी नाई पर विश्वास नहीं करता कि कोई नाई का भी अस्तित्व हो सकता है। उसने बोला, अभी तो तुम बाल अपने कटवाए, मुझसे बोलते नास्तिक का अस्तित्व नहीं, ऐसा नाई का कोई अस्तित्व नहीं। उसने कहा हां, जैसे तुमने कहा कि तुमने जब दुख देखा इस संसार का, और तुम कहते हो कि भगवान नहीं, क्योंकि दुख कैसे फिर संसार में, तो मैं देखो देख रहा हूं कितने लोगों के चेहरे पे दाढ़ी है तुम्हारे होते हुए, कितने लोगों के बड़े बड़े बाल हैं तुम्हारे होते हुए। तो यदि तुम ये बोल सकते हो कि यदि भगवान के होते हुए दुख कैसे है, तो यदि मैं भी ऐसे ही कहूं, इस तर्क को तुम्हारे ऊपर ही फेंकूं कि तुम ना ही होते हुए लोगों की दाढ़ी कैसे, हाँ, तो तुम भी नहीं होने, तुम्हारा भी कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। तो ये जो निष्ठाहीन, हालांकि कोई भी पूर्ण रूपेण नास्तिक हो ही नहीं सकता इस भौतिक संसार में। भारत में तो देखा जाए देश काल पात्र के अनुसार लोगों की आस्था बदलती रहती है, चैनल बदलते ना, जैसे आस्था से एमटीवी, वैसे तो वैसे उनकी धारणा भी बदलती रहती है। हाँ चलो भाई एग्जाम आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, तो फिर भाई भगवान पे आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है यदि कहीं पर वो कहां पर कोने में कहीं भगवान है तो मेरा जो एग्जाम, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो मैंने कुछ की नहीं, तो अंततः फिर मंदिर पे ही कोई व्यक्ति जाता है कि वहां पर आजमा ले, कोई पेपर तो लीक हुआ नहीं, तो पेपर मिला नहीं, फर्रे भी बनाने नहीं आते, उसके लिए डर लग रहा है, तो फर्रे भी बनाएंगे तो पता नहीं लगेगा कि क्या देखना है, कब क्या देखना है, कैसे कॉपी करें, तो इसलिए भगवान के पास जाओ, यदि वो कहीं पर हैं, हे परवरदिगार आप जहां पर कहीं पर हो कुछ तो कर देना कल। तो जब परेशानियां आती हैं, कुछ निकलवाना है, तब फिर तुरंत आस्था आ जाती है, और जब सब कुछ हो गया, सब कुछ ठीक जम गया, तब फिर सभी लोग सिंहासन पर बैठकर बोलते हैं तब होना ही था, हा? मैं हूं ना, मेरे वजह से ही तो सब कुछ हुआ है, और क्या। अब यहां पर कोई व्यक्ति किसी तथाकथित आध्यात्म का भी पालन करता है, जैसे यहां पर शून्यवादी, एक है भौतिकतावादी, एक है नास्तिकवाद या नास्तिकवादी, और यह है शून्यवादी, कि यह साफ साफ नहीं बोलता कि मैं नास्तिक हूं, परंतु कोई ऐसे तिकड़म और ऐसे पेचीदे सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि सब कुछ शून्य है। लोगों को पूछा जाए, पाश्चात्य देश में तो इतने सारे अलग अलग प्रकार के दर्शन शास्त्र फैलाए गए हैं, कोई कहता है भगवान के बारे में पूछो, कोई कहता है भगवान लाइट है, गॉड इज लाइट, ट्यूबलाइट, कौन सा लाइट, कोई भी लाइट, गॉड इज लाइट, गॉड इज नथिंग, गॉड इज समथिंग, गॉड इज एवरीथिंग, गॉड इज एनीथिंग, कुछ भी। हमारे बंबई के गौरांग प्रभु आए थे, वो बता रहे थे कि लोग जाते हैं कुछ खरीदने, तो उन्हें पक्का पता होता है कि वो वहां पर क्या खरीदने जा रहे हैं, और वो जगह का अर्थ अर्थात उसका उसका इस्तेमाल क्या होने वाला है। परंतु मंदिर एक जगह है जहां पर अक्सर लोग आते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हुए कि क्यों गए वहां पर। वो ये बता रहे थे, कोई विद्यार्थी जा रहा है मंदिर में क्योंकि उसका एग्जाम आ रहा है, या एग्जाम उसका हो गया, रिजल्ट आने वाला है, या किसी का रिजल्ट आ गया, फेल हो गया, फिर जा रहा है। कोई जा रहा है मंदिर में किसी की चप्पल चुराने, क्योंकि मंदिरों के बाहर बहुत सी चप्पलें मिलती हैं, तो भाई अलग अलग बहुत वैरायटी मिलता है, जैसे आप जाओ बाटा के शोरूम में ना, तो अलग अलग सब वैरायटी, तो बाटा के शोरूम में तो केवल बाटा की चप्पलें मिलेंगी, मंदिर में तो हर ब्रांड मिलेगा आपको। तो मान लो कोई उस दृष्टिकोण से जा रहा है, तो इसलिए यहां पर निष्ठावान ये जो एक श्रेणी है, यहां से यदि शुरुआत की जाए, तो हमारे आचार्य बताते हैं कि लोग भगवान से संबंध स्थापित भी कर रहे हैं तो उसकी चार श्रेणियां हैं। सबसे पहले भय, उसके पश्चात आशा अर्थात इच्छा, उसके पश्चात कर्तव्य और अंततः शुद्ध भगवान से योग स्थापित होता है प्रेम के द्वारा। तो देखिए कई बार लोग भगवान के संपर्क में आते हैं भय के कारण कि अरे मंदिर नहीं जाएंगे तो ये हो जाएगा। जैसे हमें बचपन में वो शीतला माता के मंदिर में भेजा जाता था कि यदि वहां नहीं जाओगे तो तुम्हें वो क्या बीमारी हो जाएगी, क्या चिकन पॉक्स हो जाएगा। तो कई बार मंदिर में या अध्यात्म किसी पथ में कोई जुड़ता है भय के कारण कि वहां पर नहीं जाएंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, कोई व्रत का पालन नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा, तो फिर उल्टा ये हमारे ऊपर इसका प्रकोप हो सकता है। तो भय बुद्धि से कहते हैं। फिर इससे ऊंची श्रेणी निष्ठावान व्यक्तियों की वो है कि भय इतना नहीं बल्कि कुछ चाहिए। धनम देही, पुत्रम देही, जन्म देही, ऐश्वर्य देही, रूप देही, ज्ञान देही, ये सब कुछ देते रहो देते रहो। तो इस इच्छा से जब कोई जाता है उसे कहते हैं आशा बुद्धि। तो आशा बुद्धि ये भय बुद्धि से एक ऊंची श्रेणी है। इसके पश्चात कर्तव्य। कर्तव्य का अर्थ है कि जब कोई भगवान के संपर्क में जाता है कर्तव्य परायण होकर कि भाई भगवान मुझे सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, भगवान की कृपा से मुझे ये सांस जो मैं ले रहा हूं भगवान की कृपा से, मैं जो जल ले रहा हूं भगवान की कृपा से, अन्न जो मैं खा रहा हूं भगवान की कृपा से, तो भगवान से ये सब कुछ वस्तुएं मुझे मिल रही हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं भगवान को जाकर धन्यवाद कहूं। कर्तव्य। तो जो कर्तव्य परायण होते हैं वो उनकी जो श्रेणी है आशा परायण से ऊपर। परंतु सर्वोच्च पद वो है जब कोई भगवान के साथ संपर्क स्थापित करता है प्रेम, प्रेम के द्वारा, कि न तो मुझे भय है, न तो मुझे आपसे कुछ आशा है, और न मैं केवल कर्तव्य के रूप में आपके मंदिर या आपके शरण आया हूं, बल्कि एकमेव कारण है कि मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूं या प्रेम मैंने प्रस्थापित किया है। तो ध्यान में रखिएगा कि यदि हमें कर्मी से कर्मयोगी बनना है तो अंततः ये जो सर्वोच्च स्थिति है प्रेम भगवान से स्थापित हो, इस स्थिति तक पहुंचना है हमें। अब कर्मी और कर्मयोगी का भेद बताया गया है। एक सुंदर श्लोक है, श्री वैष्णव संप्रदाय के एक आचार्य हुए महाराज कुलशेखर, इन्होंने एक सुंदर श्लोक में एक कर्मी क्या है उसकी रूपरेखा क्या है और एक कर्मयोगी कौन है उसकी रूपरेखा क्या है, इस सुंदर श्लोक में बताया है इन्होंने। नाथेना पुरुषोत्तमे त्रिजगताम एकाधिपे चेतसा सेव्ये स्वस्य पदस्य दातरि परे नारायणे तिष्ठति यम कंचित पुरुषाधमे कटिपय ग्रामेशमल्पार्थदम सेवायै मृगया महे नरमहो मूढ़ो नराकावयम। इस सुंदर श्लोक में वो तुलना कर रहे हैं, वो तुलना कर रहे हैं, एक तरफ है कर्मी एक तरफ है कर्मयोगी। कर्मी का अर्थ हमने समझा जो केवल कर्म कर रहा है अंधाधुन केवल इंद्रिय भोग के लिए, कर्मयोगी वो जो कर्म कर रहा है भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए। तो वो दोनों का विश्लेषण करते हुए तुलना कर रहे हैं और कहते हैं कि जो कर्मी है वो कर्म किसके लिए कर रहा है, वो कहते हैं वो कर्म कर रहा है पुरुष अधम के लिए और कर्म योगी कर्म कर रहा है पुरुषोत्तम के लिए। तो जो कर्मी है, कर्मी का बॉस कौन है, इस भौतिक संसार का एक कोई अधम पुरुष, जिसको वो अपना बॉस कहता है। हालांकि आजकल तो लोग केवल ऑफिस में उसको बॉस बोलते हैं, सर बोलते हैं ना। मैं यूके में था, इंग्लैंड में, वहां पर मुझे बताया गया कि 80% ज्यादा लोग, कर्मचारी जो हैं, दिन में सपना देखते हैं अपने बॉस का कत्ल कर रहे हैं। वो सपना दिन का उनका 80% से ज्यादा। एक बार एक कंपनी में बहुत से कर्मचारी, उनको समाचार मिला कि उनका जो बॉस है वो बॉस परेशान इतना हो गया, इतना त्रस्त हो गया, इतना मानसिक तनाव उसका हो गया कि वो आत्महत्या कर रहा है। और आत्महत्या कर रहा है वो अपने ऊपर पेट्रोल डालकर, जलाकर आत्महत्या करने वाला है। तो सभी कर्मचारियों को ये सूचना दी गई कि भाई हमें कुछ तो करना होगा, हम सबको मिलकर कुछ तो करना होगा। तो सभी कर्मचारी वो मिले, बोले हाँ हम अवश्य कुछ ना कुछ करेंगे। तो सभी कर्मचारी मिले और उन्होंने बॉस को जाकर पेट्रोल का ड्रम दिया, ये लो ये हमारी तरफ से, जो आप करना करने के लिए जा रहे हैं, हमारी तरफ से सहायता, हम सब चंदा इकट्ठा किए हैं, हम सब चंदा इकट्ठा किए हैं, आपकी सुखद आत्महत्या, खुदकुशी हो, आपकी खुशी जिसमें इतनी है खुद की वो हो, इसलिए। तो यहां पर महाराज कुलशेखर कहते हैं, नाथेना पुरुषोत्तमे त्रिजगतामेकाधिपे चेतसा, कि ये जो नाथ हैं किसके, एक भक्त के, एक कर्मयोगी के, वो नाथ कौन है उनके, पुरुषोत्तम, और एक कर्मी के, पुरुष अधम। तो ये विश्लेषण सबसे पहले के दोनों का बॉस कौन है, तो बॉस से समझ में आ जाएगा कि कोई कर्मी है या कर्मयोगी है। फिर आगे वो कहते हैं कि जो कर्मी है उसे कठोर परिश्रम करना पड़ता है अपने बॉस को प्रसन्न करने के लिए, उस अधम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए उसे कठोर परिश्रम करना पड़ता है। बंबई में तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों से मैं मिला हूं जो सुबह 6 बजे निकल जाते हैं, रात के 11 बजे आते हैं, 6 बजे घर से निकले हुए रात के 11 बजे आते हैं। तो मैंने कहा भाई उधर ही सो जाया करो, इतना कठोर परिश्रम, इतना कठोर परिश्रम करना पड़ता है उस एक अधम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए। और एक जो भक्त है वो पुरुषोत्तम, जो एक अधिपति है त्रिजगताम, पूरे तीनों जगत के जो अधिपति हैं, वो उन पुरुषोत्तम को प्रसन्न करने के लिए उस भक्त को करना क्या पड़ता है, केवल स्मरणे। इस श्लोक में महाराज कुलशेखर कहते हैं चेतसा, वो केवल अपनी चेतना भगवान में लगाता है, भगवान उस सेवा को स्वीकार कर लेते हैं। एक भक्त भगवान के विषय में केवल सोचता है, इस नासिक धाम में कथा हुई है गोदावरी के तट पर, एक ऐसे ब्राह्मण की जो कि भगवान श्री नारायण को वैकुंठ में वो यहां बैठे बैठे खीर अर्पित कर रहा था। तो भगवान अपने धाम वैकुंठ में, और ये ब्राह्मण गोदावरी के तट पर इसी धाम में बैठा हुआ केवल स्मरण कर रहा है कि मैं श्री नारायण को खीर अर्पित कर रहा हूं, और मन में स्मरण करते हुए उसे लगा कि भाई खीर तो भगवान को यदि आस्वादन अच्छे से करनी है तो ठंडी होनी चाहिए, गरम खीर कैसे वो अच्छे से आस्वादन करेंगे। तो मन में वो भोग चढ़ा रहा है खीर का, तो गरम खीर नहीं होनी चाहिए, खीर ठंडी हुई कि नहीं तो स्मरण में, अपने स्मरण में वो उंगली डाल रहा है खीर के पात्र में, ये देखने के लिए, ये चेक करने के लिए कि खीर ठंडी हुई कि नहीं। तो खीर गर्म थी उसके स्मरण में, और उसके उंगली पर चटका लगा। जैसे ही चटका लगा तो स्मरण भंग हुआ, वो अब अपने जब बाहरी होश में आया तो उसने देखा क्या कि उसकी उंगली जली हुई थी, और ऊपर वैकुंठ में भगवान श्री नारायण मुस्कुराए। लक्ष्मी देवी पूछती हैं कि आप अचानक मुस्कुराने क्यों लगे, क्योंकि यदि पति मुस्कुराना अचानक शुरू कर देते हैं तो चिंता हो जाती है पत्नी। तो लक्ष्मी देवी ने पूछा कि हे नारायण जी, आप अचानक मुस्कुराए क्यों। नारायण जी ने विष्णु दूत भेजे नीचे, वैकुंठ विमान भेजा, और इस गोदावरी के तट पर इस गोदावरी ब्राह्मण को तुरंत भगवत धाम बुला लिया, तुरंत भगवत धाम बुला लिया, और लक्ष्मी देवी को कहा कि इसका स्मरण इतना पक्का था, इतना पक्का इसका स्मरण था कि इसने अपने स्मरण में मुझे खीर अर्पित की, परंतु इतनी भक्ति भावना से खीर अर्पित कर रहा था कि इसके हाथ में वो चटका लगा। अब कौन है इस भौतिक संसार का बॉस जो इस प्रकार की सेवा स्वीकार करेगा अपने कर्मचारी से। ये उदाहरण को यदि हम लें तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा हो सकती है केवल उनके बारे में स्मरण करने मात्र से। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, कि केवल मेरा स्मरण करने से तुम मेरी सेवा कर पाओगे। इस भौतिक संसार के किसी बॉस को आप फोन कर कहो, बॉस आज मैं 9 से 5 आपका स्मरण करूंगा, घर बैठकर मैं केवल आपका आपका फोटो रखा हूं सामने, उसको हार पहना दिया हूं चंदन का उसको उसको हार पहना दिया हूं, और बस ताटक लगाए हुए आपके ऊपर ध्यान मेरा केंद्रित रखूंगा। ट्राई की कर देखिए, बॉस को फोन कीजिए कल, ऐसे बोलो कि आज मैं स्मरण करूंगा आपका 9 से 5, थोड़ा ओवर टाइम 1-6 बजे तक करूंगा, ठीक है। तो बॉस भी फोन पे बोलेगा ठीक है, मैं पगार भी मन में दूंगा, महीने के अंत में ना मैं भी मन में दूंगा, और इंक्रीमेंट करके दूंगा मन में। तो यहां पर ये कहते हैं कि ये अधम पुरुष इस भौतिक संसार का, जिसकी सेवा में एक भौतिकतावादी लगा हुआ है, ये क्या दे पाएंगे, क्या दे पाएंगे अंततः कठोर परिश्रम के पश्चात भी। अल्प अर्थ, बस कुछ पैसे, कुछ रकम, कुछ रुपया बस, या कुछ सुविधाएं जब तक कि वो उस नौकरी में लगा हुआ है। भगवान क्या कहते हैं, जैसे उस गोदावरी ब्राह्मण के साथ भगवान ने किया क्या, अपना स्वधाम। भगवान कहते हैं नारायणे तिष्ठति, कि मैं अपना स्वयं, मैं जो नारायण हूं, मैं अपना स्वधाम उसे देता हूं। कौन है ऐसा बॉस जो अपने कर्मचारी को कहे रिटायरमेंट के बाद मेरे बंगले में आके रहो, कोई है? मुझे याद है मेरे पिताजी बिड़ला की कंपनी में थे, तो जैसे उनका देहांत हुआ तुरंत 1 महीने बाद हमारे परिवार को नोटिस आ गया, क्वार्टर खाली कीजिए। जो क्वार्टर मिला था कंपनी ने जो दिया था, नोटिस दे दिया क्वार्टर खाली कीजिए। और हमारे पिताश्री ने उस कंपनी में 30 साल नौकरी की, 30 साल कठोर परिश्रम करने के बाद 1 महीने में नोटिस आ गया, चलो अब आपका कोई संबंध नहीं इस कंपनी से, जो संबंध था वो गुजर चुके हैं, आप भी अब जाइए। ये होता है कि नहीं? अरे ये तो जो क्वार्टर दिया था वो निकाल दिया। यहां पे देखिए भगवान बोलते हैं कि मेरे बंगले में आके रहो, मेरे धाम में आके रहो, तो ये है पुरुषोत्तम जिसकी सेवा केवल स्मरण मात्र से, आप लोग जो कर रहे हो, हम लोग जो यहां पर कर रहे हैं, केवल श्रवण और कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल इतना करने मात्र से भगवान ये आश्वासन दे रहे हैं कि मेरे धाम को मैं अर्पित कर दूंगा तुम्हें, मेरी धाम की चाबियां तुम्हें मैं दूंगा। तो यहां पर यदि कोई अपनी उस प्रकार की बुद्धि लगाए जिसे कहते हैं इस संसार में बनिया बुद्धि, यदि कोई बनिया बुद्धि भी लगाए, बनिया बुद्धि क्या है, कहां फायदा है कहां नुकसान, तो यदि कोई बनिया बुद्धि भी लगाए तो यहां पर भी फायदा किसमें है, देखिए ये कैलकुलेशन में फायदा किसको मिल रहा है, सेवा हो रही है पुरुषोत्तम की, और वो भी कैसी सेवा, केवल स्मरण करने की, इतना आसान जॉब किसको मिलेगा। और अंततः उसका निष्कर्ष क्या है, क्या मिलेगा, स्वधाम भगवान का, वो धाम जो कि सच्चिदानंद है, जो कि दुखालय अशाश्वत से परे सुखालय और शाश्वत है, वो भगवान का अमृतमय धाम प्राप्त होगा। तो ये हमें प्रेरणा देने के लिए है कि क्यों हमें कर्म योगी बनना चाहिए। बहुत ही सुंदर एक उदाहरण है कि ये दोनों में अंतर क्या है, किसमें, कर्मी में और कर्म योगी में। ध्यान से देखिए इस चित्र को, क्या दिख रहा है, एक कैसेट टेप। अब इसमें आप क्या देखते हो, दो वो चक्के होते हैं ना, आप जब टेप रिकॉर्डर में डालो एक कैसेट को तो जो दो चक्के हैं प्ले बटन दबाने पर दोनों चक्के घूमते हैं, और इन दोनों चक्कों के ऊपर क्या देखते हो आप, ये टेप, वो ब्राउन टेप, ये दोनों चक्कों के ऊपर वो घूमना, वो टेप भी घूमना शुरू करती है। तो आपने इसका अनुभव किया होगा कि जब आप कैसेट टेप रिकॉर्डर में डालकर प्ले बटन दबाते हो, दोनों चक्के घूमते हैं, वो ब्राउन टेप भी घूमती है, परंतु क्या देखा जाता है कि एक चक्के के ऊपर वो ब्राउन टेप चढ़ती जाती है और दूसरे चक्के से वो ब्राउन टेप उतरती जाती है ना। तो आप देखोगे कि आपने वो पूरा एक साइड टेप का सुन लिया तो एक साइड वो ब्राउन टेप इतनी मोटी हो गई और दूसरी साइड वो ब्राउन टेप बिल्कुल खत्म, अब केवल वो सफेद चक्का बाकी रह गया, कोई टेप नहीं उसके ऊपर। आप लोग सोच रहे होगे ये अचानक प्रभु जी को हुआ क्या, ये क्या, ये कहां से कहां जा रहे हैं, टेप वगैरह लगा रहे हैं। ये उदाहरण दिया गया है कि जो दो चक्के हैं, ये जो दो चक्के हैं उस टेप के, उस कैसेट के, वो दो चक्के, एक है कर्मी एक है कर्मयोगी। अब दोनों चक्के एक ही दिशा में घूमते हैं, अर्थात हो सकता है कि ये कर्मी और कर्मयोगी एक ही ऑफिस में काम कर रहे हो, एक ही ऑफिस में जाकर ये काम कर रहे हो, एक कर्मी और कर्मयोगी, अर्थात दोनों चक्के एक ही दिशा में घूम रहे हैं, इसकी तुलना की गई। परंतु कर्मयोगी उस ऑफिस में जा रहा है और वो जो कुछ वहां से उसे मिलता है, जो भी सुविधाएं मिलती हैं, जो कि उसे तनख्वाह मिलती है, वो सब कुछ भगवान के चरणों में लाकर रखता है उनकी सेवा के लिए। तो हो क्या रहा है, वो जो ब्राउन टेप है वो है कर्म का चक्र, वो है कर्म का फांस। तो कर्मयोगी वो चक्का है जो घूम तो रहा है, वो भी कर्म कर रहा है, परंतु उसके कर्मों के वजह से उसके ऊपर का जो ये टेप है, कर्म का फांस है, वो कम होते जा रहा है। और जो कर्मी है वो भी नौकरी धंधा पेशा कर रहा है, परंतु वो सब कुछ अपने लिए देहात्म बुद्धि भौतिकतावादी चेतना में कर रहा है। तो वो जो चक्का है वो घूमते हुए अपने ऊपर कर्म को बांध रहा है, बांध रहा है, बांध रहा है कर्म के नियमों को। तो चक्के दोनों घूमेंगे, एक कर्म योगी भी कर्म कर रहा है और कर्मी भी कर्म कर रहा है, फर्क क्या है? इस उदाहरण से हमने समझा, समझ में आया आपको? तो अब कर्मी से कर्म योगी बनने का पथ, क्योंकि हमने भौतिक संसार की रचना क्यों किस लिए हुई इसकी चर्चा कर ली, तो अब इस भौतिक संसार में हम जो जो कुछ कर रहे हैं, इस भौतिक संसार में आए हैं, पहले आने के बाद हमारी दशा क्या, तो बताया गया है जीव अर्थात हम मनुष्य, जीव की दशा के पांच लक्षण, जिससे समझ में आएगा कि ये जो यात्रा हमें करनी है, कौन सी यात्रा? कर्मी से कर्म योगी। ये यात्रा हमारी कहां से प्रारंभ होगी और कहां गंतव्य स्थान है, तो इसमें ये पांच मुद्दे, जीव की पतन दशा अर्थात हम आध्यात्मिक संसार, हमारे घर को छोड़कर इस भौतिक संसार में जो आए हैं, हमारी दशा क्या है, जीव के इंद्रिय भोग का क्या कार्यक्रम, यहां पे आने के बाद हमने जो किसके लिए हम आए यहां पर, हमने क्या कार्यक्रम हमारे बनाए, ये दूसरी दशा, भगवान श्री कृष्ण का मत क्या है हमारे इस कार्यक्रम को देखते हुए जब वो इस भौतिक संसार में आते हैं, और फिर भगवान ने समाधान क्या दिया है, समाधान की प्रक्रिया क्या है, और अंततः इंद्रिय भोग की शुद्ध अवस्था अर्थात कर्म, इंद्रिय भोग का अर्थात है हमारे कर्म की शुद्ध अवस्था, ये क्या है। तो सर्वप्रथम जीव की पतन दशा, जीव की पतन दशा के विषय में स्वयं भगवान गीता में कहे हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानिकर्षति। भगवान कहते हैं इस श्लोक में कि जितने सारे जीव हैं वो मेरे अंश हैं, सनातन रूप में, नित्य रूप में ये सारे मेरे अंश हैं, ये सारे जीव, और इस भौतिक संसार में ये आ गए हैं, गिर चुके हैं, क्यों? क्योंकि इन्हें अपनी इंद्रियों को और मन को भोगना है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि, इंद्रियां कौन सी हैं हमारी? ये आंख, ये नाक, ये जिह्वा, ये कान, ये त्वचा, इसे कहते हैं पंचेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय। तो इस पंच ज्ञानेंद्रिय को संतुष्ट करने के लिए हम इस भौतिक संसार में मन को लेकर आए, कर्षति, कर्षण हो रहा है इस भौतिक संसार में, इन इंद्रियों को संतुष्ट करने में हर एक जीव जो लगा हुआ है, कोई आंखों को संतुष्ट करने में लगा है, कोई कानों को संतुष्ट करने में लगा है, कोई जिह्वा को संतुष्ट करने में लगा है, कोई नाक को संतुष्ट करने में लगा है, कोई त्वचा को संतुष्ट करने में लगा है, और कोई नहीं तो हम मनुष्य तो इन पांचों इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे एक साथ। तो अब भगवान कहते हैं कि इनके वजह से, इन कारणों के वजह से जीव की दशा क्या है कि इसे संतुष्ट करने में वो लगा हुआ है, इसलिए वो दुख भोग रहा है। दुख दोष अनुदर्शनम भगवान कहते हैं, और वो कौन से दुख, कल हमने उसकी चर्चा की, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और त्रिताप, अधि आत्मिक, अधि भौतिक और अधि दैविक। तो जितना जीव इंद्रिय भोग के कार्यक्रम में लगता है उतना ही वो इस भौतिक संसार में जो उसकी अवधि है रहने की उसे बढ़ा रहा है। तो ये सर्वप्रथम ये दशा है जीव की, इसे कहते हैं पतन दशा गीता के अनुसार। तत्पश्चात जीव के इंद्रिय भोग का कार्यक्रम, यहां पर आने के बाद उसके इंद्रिय भोग का कार्यक्रम है। ये एक मुनि हुए जिनका नाम था चार्वाक, जिन्होंने ये इंद्रिय भोग का कार्यक्रम भौतिकतावादी मनुष्य के लिए प्रस्तुत किया। यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनः आगम भवेत। ये कहते हैं कि हमने इस प्रकार के सिद्धांत सुने भी होंगे, लोग बहुत पालन भी करते हैं इस प्रकार के सिद्धांत, यावत जीवेत सुखम जीवेत, कि जब तक जियो ऐश करो, सुख में जियो, यावत जीवेत सुखम जीवेत। लोग कहते हैं ना, कल भी हम इसकी चर्चा कर रहे थे, अरे चार दिन की जिंदगी है, ऐश कर प्यारे, और उस ऐश को पाने के लिए कैश अर्जित कर प्यारे, क्योंकि कहा गया है देयर इज नो ऐश विदाउट कैश। तो यहां पर ये श्रीमान चार्वाक मुनि ये कहते हैं कि हर एक जीव का कार्यक्रम ये होना चाहिए कि जब तक जियो सुख से जियो। तो भाई कोई पूछे, भाई सुख कैसे, सुख से कैसे हम जिए, तो कहता है ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। घृत का अर्थ क्या होता है? घी। कि भाई जो कुछ तुम भोगो अर्थात जो कुछ खाओ, इनके अनुसार कम से कम ये पिछले युग के नास्तिक थे ये चार्वाक, तो कम से कम इनकी परिभाषा भोग करने की क्या थी कि जो कुछ खाओ घी में पका खाओ। आज यदि ये चार्वाक मुनि कलयुग में आ जाते तो ये श्लोक बदल जाता, वो कहते वड़ा पाव मिसल पाव खाओ, पिज्जा बर्गर खाओ, या पता नहीं और क्या क्या लोग, ये तो भारत हो गए, पाश्चात्य देश में तो लोग पता नहीं उसे आप बोलो बोल भी नहीं सकते कि ये खाने की वस्तु है, ऐसी घिनौनी वस्तुएं वो लोग खाते हैं कि हम यहां पर भगवान के सामने उसकी चर्चा भी नहीं कर सकते। तो अब ये कहते हैं कि भाई यदि सुखी होना है तो अच्छे अच्छे पकवान खाओ। अब देखिए इस भौतिक संसार में ये जो सिद्धांत है, हालांकि ये नास्तिक सिद्धांत है, परंतु ये जो सिद्धांत है इस सिद्धांत की सराहना बहुत लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो भी इंद्रिय भोग उन्हें मिलता है या उसके संपर्क में वो आते हैं, वो केवल ये जो पांच इंद्रियां जिसकी हमने चर्चा की, इन पांच इंद्रियों में से कहा गया है ये जो हमारी जिह्वा है, तार मध्य जिह्वार अति लोभमय सुडुरमति, ये जिह्वा सबसे लोभमय है। और इसका भी विश्लेषण कर बताया है क्यों, क्योंकि हमारी जो बाकी सारे इंद्रियां हैं उनकी तुलना में ये जिह्वा एक है। दो आंखें हैं, कार्य क्या है? देखना, एक कार्य है। दो इंद्रियां हैं, कार्य एक है। दो कान हैं, कार्य एक है, क्या? सुनना, कई बार वो भी नहीं हो जाता। दो ये नासिका है, कार्य क्या है? एक, सूंघना। ये जिह्वा एक है परंतु इसके कार्य दो। बाकी इंद्रियां दो हैं, कार्य एक, जिह्वा एक, कार्य दो। कौन से दो कार्य जिह्वा के? या तो इस जिह्वा से कुछ निकलता रहता है बाहर बकबक, वो नहीं, जब उसको बंद करना है तो कुछ अंदर डालते रहो, तो ये दो चलते रहते हैं। तो इसलिए तार मध्य जिह्वार अति लोभमय सुडुरमति, सबसे ज्यादा ये अति दुर्मिल और अति दुष्कर हो जाती है इसको 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 नियंत्रण में रखना। तो यहां पर ये कहते हैं कि यदि सही आपको सुख प्राप्त करना है तो इस प्रकार से सुख प्राप्त करो। तो कोई पूछे, भाई घी तो बहुत महंगा है और असली शुद्ध घी तो मिलता नहीं, डब्बे पे लिखा भी जाए परंतु फिर भी शुद्ध घी रहता नहीं आजकल, तो ये कहते हैं कि या तो चोरी करनी पड़े या भीख मांगनी पड़े या किसी पे उधार पे लेना पड़े, बैग बोरो स्टील, घी लेकर आओ उसमें खाओ। तो कोई पूछे भाई चोरी कर लूंगा उधार पर लाऊंगा तो फिर वापस उसका तो परिणाम होगा ना, भरना पड़ेगा, उसका परिणाम हो जाएगा मेरे ऊपर पाप कर्म करने का। तो कहता किसने देखा, भस्मी भूतस्य देहस्य। अरे किसने देखा, पुतक पुनः आगमन भवे, कुतः पुनः आगमन भवे, कि किसने देखा है कि आगे चलकर तुम पैदा भी होने वाले हो कि नहीं, अगला जन्म भी है कि नहीं, बस ये जो जीवन मिला है यही सब कुछ। तो ये हर एक जीव का कार्यक्रम इस भौतिक संसार में कि कैसे ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय भोग निचोड़ निचोड़ कर ले सके। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण का मत किया है हमारे इस कार्यक्रम के विषय में। ये प्रगति का पथ है, पतन दशा से हम आए, हमारा कार्यक्रम हम समझे, कार्यक्रम में अब हम त्रस्त हुए हैं हमारे इंद्रिय भोग के, तो भगवान का मत जानना आवश्यक है। भगवान कहते हैं श्लोक में, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नते शुरमते बुधः। कि इस भौतिक संसार में जितना भी इंद्रिय भोग कोई कुछ भी कर ले परंतु उसे तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि भगवान ने इस भौतिक संसार को बनाया ही इस प्रकार से है। माया देवी संसार की जो अधिष्ठात्रा देवी है, इस संसार को इस प्रकार से रची हैं कि चाहे कितना भी कोई सुख खोजने का प्रयास करे अंततः वो दुख की योनि है। यही भगवान यहां पर अपना मत बता रहे हैं गीता में कि ये जो हमारा इंद्रिय भोग का कार्यक्रम है, इस इंद्रिय भोग के कार्यक्रम को हम बंद करें और वास्तविक इंद्रिय भोग क्या है उस वास्तविक इंद्रिय भोग में लगें, जो कि समाधान की प्रक्रिया हमारे शास्त्र में बताई गई है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। कि हमारी इंद्रियों को उनका हनन नहीं करना, ये जो हमारी आंखें हैं, नाक, जो भी हमारी सारी पांच इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को हमें लगाना है ऋषिकेश की सेवा में। भगवान श्री कृष्ण का एक और नाम है ऋषिकेश, और हमारी इंद्रियों को संस्कृत में कहा गया है ऋषिक। तो ये जो ऋषिक है इंद्रियां हमारी, इंद्रियों को इनके जो ईश है अर्थात ईश्वर है भगवान श्री कृष्ण, इनकी सेवा में लगाना। और इनकी सेवाओं में कब ये हमारी इंद्रियां लग पाएंगी, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, जब सारी उपाधियों से हम मुक्त हो जाएंगे। कौन सी उपाधियां, कि मैं एक पुरुष हूं, मैं एक स्त्री हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं किसी का बच्चा हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं भारतीय हूं, मैं अमरीकी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये सारी जो उपाधियां हैं, इन सब से जब तक हम विनिर्मुक्त नहीं होंगे तब तक हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपनी इन इंद्रियों को या अपने कर्मों को नहीं लगा पाएंगे। विनिर्मुक्त होने का अर्थ है आंतरिक रूप से विनिर्मुक्त होना। ये शारीरिक रूप से तो हम नहीं हो पाएंगे परंतु आंतरिक रूप से हमें विनिर्मुक्त होना है इन सब से, और वो है शुरुआत हमारे उद्धार की, वो है शुरुआत कर्मी से कर्म योगी बनने की। इसलिए इंद्रिय भोग की शुद्ध अवस्था, इंद्रिय भोग की शुद्ध अवस्था महाराज अम्बरीश इन्होंने अपने उदाहरण से सिखाई। ये जो सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवत का, सवई मन कृष्ण पदार विंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानु वर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराम अच्युत सत्कथोदये। इस सुंदर श्लोक में बताया गया है कि महाराज अम्बरीश एक बहुत ही विख्यात भगवान के भक्त हुए सत्युग में, बहुत बड़े राजा ये महाराज अम्बरीश, इन्होंने अपने उदाहरण से बताया और सिखाया और दिखाया कि कैसे हमें अपने हरेक कर्म को भगवान को कैसे समर्पित करना चाहिए, अर्थात हमारी आंखें, एक एक हमारे अंग को हम कैसे भगवान को समर्पित करें, ये इन्होंने अपने उदाहरण से सिखाया। और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, पूरी पृथ्वी के राजा थे। इसलिए इनका उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि यदि कोई पूरे पृथ्वी का राजा अपने हरेक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकता है, ऋषिकेश की सेवा में लगा सकता है और कर्म योगी इस प्रकार से बन सकता है, तो कोई भी वो बहाना नहीं दे सकता इस भौतिक संसार में कि नहीं मेरे पास समय नहीं है या मैं बहुत व्यस्त हूं। तो आइए देखिए कि इन्होंने कैसे इंद्रिय भोग की शुद्ध अवस्था को प्राप्त किया। सवई मन कृष्ण पदारविंदयोर, अपने मन को उन्होंने श्री कृष्ण के चरण कमलों पर लगाया। तो ये सब नोट करने लायक है कि हमें मन को कहां लगाना है कर्म योगी बनना है। तो अमरीश महाराज सिखा रहे हैं कि उन्होंने अपने मन को लगाया कहां, टीवी देखने में नहीं, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर। तो सवई मन कृष्ण पदार विंदयोर वचामसी वैकुंठ गुणाणु वर्णने, उन्होंने अपने वचनों को, देखिए हमारे दिन में जो भी हम कर्म करते हैं ये पूरी इसकी सूची यहां पर अम्बरीश महाराज दिए हैं। मन से कुछ सोचते हैं, जिह्वा से कुछ बोलते हैं, ये सब हमारे कर्म की सूची है। तो जिह्वा से यदि बोलना है तो महाराज अम्बरीश क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण कीर्तन गान, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम बचपन में एक भजन हमें सिखाया गया था जिसमें बताया था, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहियो। ये जन्म हमारा केवल व्यर्थ की बातों में बीत जाता है परंतु कभी भगवान का नाम नहीं निकलता मुख से। श्रील प्रभुपाद संस्थापक आचार्य इस्कॉन के वो एक कथा सुनाया करते थे। एक बंगाली महिला जो कि कभी भगवान का नाम ली नहीं और अब वो लेटी हुई है मृत शैया पर, बस कुछ चंद सांसें बाकी रह गई। तो उसके पुत्र आते हैं, रिश्तेदार आते हैं और कहते हैं कि अब तो कम से कम भगवान का नाम ले लो, ये हरे कृष्ण महामंत्र जप लो। तो ये बोलती हैं, मरते मरते अंतिम सांस बाकी है, अंतिम सांस लेते हुए ये कहती है, बाबा रे बाबा ए तो बड़ा नाम नित्य पारबे ना है, मर गई। ये इतना बड़ा वाक्य बोल के मरी। अरे इससे अच्छा, श्रील प्रभुपाद कहते थे, इससे अच्छा वही जिह्वा, वही उसके पास उतनी शक्ति बाकी थी, सांसें बाकी थी, उसी शक्ति उसी वाणी से यदि वो बोल देती क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसका उद्धार हो जाता। तो महाराज अम्बरीश ये हमें सिखा रहे हैं कि मन को लगाना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर, वाणी को लगाना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गान करते करने में, हाथों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा। भगवान श्री कृष्ण की सेवा का अर्थ ये नहीं कि केवल मंदिर में आके उनकी सेवा करें। जहां कहीं पर भी हम कार्य में लगे हुए हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी धंधे में हैं, उस धंधे का जो भी निष्कर्ष है यदि लाकर हम भगवान को अर्पित करते हैं तो वो हाथ जो हमारे लगे हुए हैं, कोई यदि मैकेनिक भी है परंतु गाड़ी भी ठीक कर रहा है और वो गाड़ी ठीक करके जो उसका उसे निष्कर्ष मिलता है उसे भगवान की सेवा में लगाता है, तो उसके जो हाथ गाड़ी को ठीक कर रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। इसे कहते हैं कृष्ण सेवा। तो अम्बरीश महाराज वो अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण की व्यक्तिगत सेवा भी किया करते थे। कर्ण अर्थात कान, ये कानों को लगाना है कृष्ण लीला श्रवण, जैसे चल रहा है भगवान श्री कृष्ण की लीला का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण ने जो आदेश दिए हैं वो भी, तो कानों को लगाना है उसमें। यदि कानों को पूछा जाए कि तुम्हारे कर्म क्या होने चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का लीला श्रवण। मन को पूछा जाए कि तुम्हारा कर्म क्या होना चाहिए, चरण कमलों पर ध्यान। ये जीवा को पूछा जाए तुम्हारा क्या कर्म होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का नाम। अक्ष आंखों, आंखों को यदि पूछा जाए कि ये आंखों का कर्म क्या होना चाहिए, श्री कृष्ण विग्रह का दर्शन। इतने सुंदर भगवान श्री कृष्ण, श्याम सुंदर घन श्याम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन इन आंखों को करते रहना चाहिए, जो कि अम्बरीश महाराज ने अपने उदाहरण से सिखाया। स्पर्श अर्थात भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का स्पर्श करते हुए, उनकी सेवा करते हुए अपने त्वक इंद्रियों को लगाना, ये उसका कर्म अम्बरीश महाराज सिखाए। आगे नाक, ये जो नासिके इंद्रिय श्री कृष्ण के चरणों के तुलसी दल, ये नहीं कि इतने सारे जो परफ्यूम है उनको छिड़क छिड़क कर बस उसका उसका खाली वो सूंघते रहें उसकी श्वास या उसका उसकी गंध। यहां पर बताया गया है कि भगवान से संबंधित जो गंध है, भगवान के चरण कमल या भगवान को पुष्प जो अर्पित हुए, उससे अपने नासिका को शुद्ध करें, चरणों को अपने पैरों को भगवान श्री कृष्ण के तीर्थ स्थान या मंदिरों में जाने के लिए लगाएं, न कि किसी थिएटर में, न कि किसी ऐसे जगह पर जहां पर हमारी चेतना दूषित हो रही है, वहां के बदले यदि हमारे पैरों को हम लगा रहे हैं भगवान के तीर्थ स्थान में जाने में जाने के लिए, तो वो हमारे जो पैरों के द्वारा किया गया कर्म है उसके द्वारा हम भगवान से संबंध स्थापित कर रहे हैं। और शीश, ये जो शीश है ये भगवान के सामने झुकाना, और जिह्वा और हमारी इच्छाएं, बहुत महत्वपूर्ण जिह्वा की हमने तुलना की थी कि ये जिह्वा जो है अति लोभमय है, परंतु यही जिह्वा जो भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद आस्वादन करती है तो वो जिह्वा वो सहायक बनती है हमारे उद्धार के। जिह्वा के दो कार्य बताए थे ना, एक कार्य है बोलना, तो बोलना क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र, और आस्वादन क्या करना है, श्री कृष्ण का प्रसाद। और अंततः इच्छाएं, अम्बरीश महाराज ने अपने उदाहरण से सिखाया कि इच्छा यदि हम हमारे मन में पनपना चाहते हैं, पैदा करना चाहते हैं, तो वो इच्छाएं होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा। तो यहां पर महाराज अम्बरीश ने अपने उदाहरण से क्या समझाया, क्या सिखाया है कि ऐसा एक भी कर्म उन्होंने छोड़ा नहीं जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित नहीं किया जा सकता। हमारी इंद्रियों के द्वारा हम कर्म करते हैं ना, कर्म किससे करते हैं, इंद्रियों के द्वारा। तो एक एक इंद्रियों को लेकर महाराज अम्बरीश हमें बता रहे हैं कि आंखों को क्या करना चाहिए, जीवा को क्या करना चाहिए, हमारी नासिका को क्या करना चाहिए, कानों को क्या करना चाहिए, मन को क्या करना चाहिए, त्वक इंद्रियों को क्या करना चाहिए, सब कुछ इतना विश्लेषण कर दे दिए। और न केवल उन्होंने अपना विश्लेषण कर दिया, अपने उदाहरण से उन्होंने पालन कर बताया, जो कि पूरी पृथ्वी के राजा थे एक जमाने में अम्बरीश महाराज, उन्होंने अपने उदाहरण से ये सिद्ध किया है कि कैसे कर्मी से हम कर्म योगी बने। ये अचानक क्या आ गया, क्या दिख रहा है आपको, कितने हैं, तीन शून्यों को जोड़कर क्या होगा, इसको ऐड करो कितना मिलेगा आपको, कितना मिलेगा, शून्य। ये श्रील प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे कि इस भौतिक संसार में हम जितने कर्म करते हैं और कर्मों के वजह से हमें जो उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, किसी ने बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया अपने कर्मों के द्वारा, किसी ने बहुत बड़ा धंधा खड़ा कर लिया अपने कर्मों के द्वारा, किसी ने कंपनी खोल ली, किसी ने घर बांध लिया अपने कर्मों के द्वारा, किसी ने ज्ञान अर्जित कर लिया कर्मों के द्वारा, कोई बहुत शक्तिशाली हो गया कर्मों के द्वारा, ये जितनी सारी उपलब्धियां कर्मों के द्वारा कोई करता है, परंतु यदि भगवान के संबंध में नहीं है तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं वो शून्य के समान है। चाहे कितने भी शून्य आप जोड़ दो और जोड़ जोड़ के उनकी गणना करो, अंततः वो शून्य ही रहेंगे। तो यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि इन शून्यों को यदि कुछ मूल्य आपको देना है तो आपको क्या करना है? अब क्या हो गया? अब आप नहीं कहोगे कि केवल तीन शून्य हैं, आप क्या बोल रहे हो, ये 1000। तो श्रील प्रभुपाद ये सुंदर उदाहरण दिया करते थे कि हमारे जीवन के कर्मों की सारी उपलब्धियां शून्य के समान और भगवान श्री कृष्ण 1 के समान। हमें शून्यों को नहीं छोड़ना, 1 को लगाना है। कर्मों को नहीं छोड़ना, वो उपलब्धियों को नहीं छोड़ना है। उन उपलब्धियों के सामने यदि 1 लगा दो तो जितनी सारी उपलब्धियां हैं उनको अपना मूल्य मिल जाएगा, दे विल गेट देयर वैल्यू। और जिसने सारी उपलब्धियां प्राप्त कर ली, फिर से ये उदाहरण हम आपको दोहरा रहे हैं, सारी उपलब्धियां प्राप्त कर ली परंतु यदि अंततः जीवन के अंत समय यदि 1 नहीं, 1 की तुलना किससे की है? कृष्ण भावनामृत से। यदि 1 नहीं तो क्या? फिर से शून्य। तो क्या आप लोग सब आपके जीवन में वो 1 लाना चाहते हो, या 1000 वो मूल्य लाना चाहते हो, या केवल शून्य? तो वो 1 यदि हमें लाना है तो ये जो प्रणाली है, सर्वप्रथम श्रवण करने की, उसके पश्चात कीर्तन, और जो हमने अम्बरीश महाराज के उदाहरण से सुना कि हमारे हरेक इंद्रिय को कैसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हम लगाएं, इसके द्वारा हम हमारे जीवन में, अर्थात हमारा जीवन क्या है, केवल ये सारे शून्य हैं और कुछ नहीं। हम पढ़ लिख लें, बहुत बड़ा पैसा कमा लें, उपलब्धियां कर लें, कोई उपाधि प्राप्त कर लें, कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन जाए कहीं का भी, ये सब भगवान श्री कृष्ण की तुलना में शून्य के समान है। और भगवान श्री कृष्ण से वो योग स्थापित करना, वो 1 के समान। तो शून्य से कैसे 1000 बन सकता है, यही आज की जो हमारी चर्चा हुई उसका उत्तर है। कर्मी से कर्म योगी कैसे हमें बने? तो अब ये प्रश्न उठता है कि भाई इस कलयुग में आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि ये जो 1 आप बता रहे हैं ये थोड़ा सरलता से, आसानी से हमारे शून्यों के बगल में लगा सके हम। तो कैसे हम उस 1 को अपने जीवन में, विशेष रूप से इस कलयुग में, हालांकि भगवान ने तो भगवत गीता सुनाई द्वापर युग में, और भगवान ने भगवत गीता सुनाई है बहुत पूर्व काल सूर्यदेव विवस्वान जी को, परंतु इस कलयुग में वही भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता का निचोड़, केवल भगवत गीता का निचोड़ नहीं, पूरे वैदिक वांग्मय का निचोड़, पूरे शास्त्रों का निचोड़ भगवान श्री कृष्ण दे दिए हैं इस हरे कृष्ण महामंत्र। इस हरे कृष्ण महामंत्र में उन्होंने सारे जितने भी शास्त्रों में ज्ञान दिया हुआ है, उस पूरे ज्ञान को कैसे हम अपने कर्मों में उतारें, इस हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा दिया। परंतु इस हरे कृष्ण महामंत्र को हम कैसे सही तरीके से, पहले तो इसका हम मर्म जाने कि है क्या यह हरे कृष्ण महामंत्र, और फिर इसे कैसे हम सही मायने में अपने जीवन में लाएं, भगवान का नाम को कैसे हम अवतीर्ण कराएं अपने जीवन में, ये जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए कल का हमारा विषय रहेगा कि इस कलयुग में उद्धार का एकमेव उपाय क्या है। कलयुग में उद्धार का एकमेव उपाय है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एकमेव उद्धार एकमेव उपाय है इस कलयुग में उद्धार का। परंतु उस हरे कृष्ण महामंत्र को जो कि इतना आसान लगता है, उसे सही तरीके से हमारे दैनिक जीवन में हम कैसे उतारें, इसकी चर्चा हम करेंगे कल के दिन, अंतिम दिवस जो हमारे हरे कृष्ण उत्सव का होगा उस दिन। हरे कृष्णा। बोलो श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की, श्रील प्रभुपाद की।
धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को सूचना देना चाहते हैं कि कल यहाँ पर हम जो